Good evening, everyone. Welcome to the knowledge series of SGRKF. SGR Knowledge Foundation is a Section 8 company established in the year 2008. It started its journey taking small yet significant steps towards sustainable development of the society while strengthening the socio-cultural environment, aiming to promote literature and words of wisdom in the mainstream. The Concept Knowledge series took place and also has taken the shape of a literature festival since December 2019 as Orange City Literature Festival. The second edition was conducted online in November 2020, and we have received a very good response to. The session of knowledge series is organized every month, and since the pandemic and lockdown, the session is taking place online since April 2020. Today's session is the 54th session of this series. Bhartiya Samvidhan ke Nirmata, Samajik Samrasta ke Prerak va Bharat mein Samajik Kranti ke Samvak, Bharat Ratna Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Ve kyu chahte the desh mein Samajik Samta aur Samrasta? For today's session, we have invited Mr. Kishore Makwana, where he will be talking about why did Ambedkar want social equality and harmony in the country. Kishore Makwana, a devoted and vigilant journalist and activist in its true sense, has an in-depth study of social life. A columnist of Social Network in Sunday edition of renowned Gujarati daily Divya Bhaskar. He is an editor of Namaskar, a popular family magazine, publisher of social magazine Samaj Samvedana, also an author of the books like Swami Vivekanand, Rashtriya Ghatna Chakra, RSS Ka Lakshya, Dr. Babasaheb Ambedkar, Safalta Ka Mantra, and many others. Compilation of articles and speeches like Samajik Samrasta, Apna Narendra Bhai. He accompanied the then Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee in historic Lahore tour in 1999. He has also been honored with awards like Panchanya Nachiketa Samman and Pratap Narayan Mishra Yuva Sahitya Puraskar. I would now request sir to kindly take over the session.
SGR Knowledge Foundation ki aur se ये जो वर्चुअल व्याख्यानमाला का आयोजन हो रहा है और इनके साथ जुड़े सभी को मेरा अंतर्मन से नमस्कार। और ये जो नॉलेज फाउंडेशन है वो इतना अच्छा काम करती है, मैं भी जब 19 में हुआ था नागपुर में तब मैं भी आया था और मैंने भी हिस्सा लिया था और दो दिन का ऐसा एक साहित्य लिटरेचर सोशल सब्जेक्ट ऐसे वो एक महाकुंभ होता है इस प्रकार का था। तो ये जो SGR नॉलेज फाउंडेशन जो इस प्रकार का कार्य करती है वो अपने आप में एक अभिनंदनीय है और वर्तमान समय में इसकी सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार हमारा समाज हमारा राष्ट्र आज स्थिति से जा रहा है तो उसमें एक हम पूरक भी बन सकते हैं। तो मैं पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ फाउंडेशन को। और आज जो हमारा विषय है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर क्यों चाहते थे देश में समता और समरसता, तो अपने आप में ये विषय जब हम बाबा साहब अंबेडकर का समग्र मूल्यांकन करते हैं, उनको उनके साहित्य को पढ़ते हैं, उनके दर्शन को देखते हैं, उनके विचारों को देखते हैं, उनके कार्य को देखते हैं, तब हमारे ध्यान में आता है कि इस महापुरुष का जिस प्रकार का व्यक्तित्व था, जिस प्रकार का उनका दर्शन था, तो ऐसा लगता है कि शायद ये देश के एकमात्र ऐसे महापुरुष होंगे शायद कि जिनको इतना बड़ा अन्याय हुआ कि ऐसी एक वैश्विक प्रतिभा, महासागर सा व्यक्तित्व, मगर उनका व्यक्तित्व उनके कार्य सिर्फ दो ही बिंदु पर आकर रुक गया। एक तो वो दलितों के नेता थे या तो संविधान निर्माता थे, बस ये दो ही उनकी पहचान बन गई, मगर वास्तव में वो क्या चाहते थे, उनके दर्शन का भारत क्या था, वो कैसे स्वप्न दृष्टा थे, उनकी नजरों में उनका देश किस दिशा में जाना चाहिए, वो सपना कैसा था, वो लोगों के सामने आया ही नहीं, क्योंकि हर तरह से यही प्रयत्न हुआ कि ये दलितों के नेता थे या संविधान निर्माता थे। मगर जैसे जैसे हम उनके साहित्य को पढ़ते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, उनको कार्य को पढ़ते हैं, तब हमारे ध्यान में आता है कि इस महापुरुष का जो पूरा जीवन था वो दो बिंदुओं पर केंद्रित था। अपना जो हृदय का केंद्र बिंदु था उसमें दो बातें थे, वो बहुत क्लियर हमें दिखाई देती है। एक तो ये हमारा समाज का जो शोषित पीड़ित वर्ग है उसे शताब्दियों से न्याय से वंचित कर दिया था, अधिकारों से वंचित कर दिया था, तो उसको कैसे न्याय मिले, अधिकार मिले, इसके लिए अपनी सारी डिग्रियां, अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। दूसरा, इस महापुरुष का जो जीवन का जो केंद्र बिंदु था, उनका हृदय का जो केंद्र बिंदु था, और वो था, अगर उसे दो ही शब्दों में हमें कहना है तो नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहला, ये उनका जीवन का केंद्र बिंदु था। और जब हम बाबा साहब अम्बेडकर को जितना भी पढ़ते हैं, जितना भी अंदर जाते हैं, उनके सभी वॉल्यूम हम पढ़ते हैं, उसके आधार पर जब हम मूल्यांकन करते हैं, तो ये बातें, ये दो बातें जो मैंने बताई वो क्लियर कट हमारे सामने आती है। अब प्रश्न ये भी है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ उस समय कैसी स्थिति थी, उससे पहले कैसी स्थिति थी हमारे देश की। हम सब जानते हैं कि ये भारत वर्ष है, ये सोने की चिड़िया माना जाता था, ज्ञान विज्ञान के उसके जो आलोक है पूरे विश्व में फैले हुए थे, सब जानते हैं। मगर एक स्थिति ऐसी आ गई कि सोने की चिड़िया कहने वाला एकदम अंधकार के गर्त में चला गया, गरीबी की गर्त में चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा भी नहीं है, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है जिसका नाम है अंगस मेडिसन प्रोफेसर, वो है यूरोपियन अर्थशास्त्री है, पोलैंड की यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं, और उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री जो इकोनॉमी है उस पर एक किताब लिखी है, और उस किताब वो ऐसे ही जैसे वो कोई वार्ताकार जैसे वो लिख डालते हैं, वैसा नहीं है, उन्होंने पूरी दुनिया का जितना भी इकोनॉमिक है उसका डिटेल में अभ्यास किया, और उसका जीरो से लेकर 2000 तक, 20वीं शताब्दी तक 2000 वर्ष का पूरा आर्थिक जो पहलू था पूरा वर्ल्ड का, उसका उन्होंने अभ्यास किया, और उसके आधार पर मेडिसन ने कहा कि लगभग 16वीं शताब्दी तक भारत पूरा वर्ल्ड का जो जीडीपी था उसमें 33% भारत का था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत कैसा समृद्ध रहा होगा एक समय, तो ऐसे ही वो सोने की चिड़िया नहीं कहा गया होगा। दूसरा, हम बाबा साहब अंबेडकर के, उन्होंने जितनी भी डिग्रियां प्राप्त की थी वो अर्थशास्त्र में प्राप्त की थी, तो उनके अर्थशास्त्र पर हम प्रॉब्लम ऑफ रूपी वगैरह सब पढ़ते हैं, तो उसमें भी हमें यह दिखाई देता है बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बहुत सटीकता से वर्णन किया कि भारत समृद्ध था और अंग्रेज आने के बाद कैसे यहां धीरे धीरे गरीबी बढ़ती गई। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात और भी कही कि चौथी शताब्दी तक भारत में ये छुआछूत जातिवाद वगैरह नहीं था, मगर जैसे ही वो बढ़ता गया तो राष्ट्र केंद्र में नहीं रहा, अपनी जो सांस्कृतिक मूल्य थे वो केंद्र में नहीं रहा और अपनी जाति केंद्र में आ गई, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो जातिवाद था, छुआछूत थी, उसे दूर करने का प्रयत्न नहीं हुआ इस देश में, ऐसा भी नहीं है, अनेक महानुभावों ने, अनेक संतों महंतों ने इसे दूर करने का प्रयास किया। स्वयं बाबा साहब अंबेडकर ने भी बहिष्कृत भारत में रामानुजाचार्य का बहुत विस्तृत उल्लेख किया है, और उन्होंने कहा है कि इस दक्षिण के जो रामानुजाचार्य थे उन्होंने कैसे इस छुआछूत की जो मानसिक बीमारी थी, ये जातिवाद का जो रोग था, उसे दूर करने का कैसे भरसक प्रयत्न किया, वो स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। अनेक रामानंद ऐसे दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गुजरात के नरसिंह मेहता, पूरे शायद कोई प्रांत ऐसा नहीं रहा होगा कि जहां ये छुआछूत की बीमारी दूर करने का प्रयत्न न किया होगा। मगर बाबा साहब अम्बेडकर और ये जो प्रयत्न हुए उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है ना वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं इस अछूत जाति में जन्म लेने के कारण वो जो पीड़ा थे वो समझते थे कि ये पीड़ा क्या है। बाकी सबने संवेदना के आधार पर, वेदना के आधार पर, स्नेह के आधार पर, प्रेम के आधार पर ये जो छुआछूत की बीमारी थी उसे दूर करने का प्रयत्न किया, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जीवन का यही केंद्र बना दिया। बाकी लोगों ने पूरा अपने जीवन का केंद्र तो बाकी अनेक प्रकार था, आध्यात्मिक जागरण था वगैरह वगैरह अनेक प्रकार का था, मगर बिंदु यही छुआछूत की जो बीमारी थी, जातिवाद था, उसे दूर करने का उन्होंने प्रयत्न किया। हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस प्रकार का प्रयत्न काफी हुआ है, गाड़गे बाबा, तुकाराम, ऐसे अनेक संतों महंतों और महापुरुषों ने प्रयत्न किया, मगर बाबा साहब अंबेडकर जब 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ, हम सब जानते हैं उनमें उनके जीवन के जो बाल्यावस्था के पहलू है उसमें बहुत नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर उसी में मेरा समय पूरा चला जाएगा, मगर दो घटना का उल्लेख मैं करूंगा ताकि आपके ध्यान में आए कि बाबा साहब अम्बेडकर जब उनका जन्म हुआ उस समय कैसी समाज की दारुण अवस्था थी, कैसा जातिवाद का जो रोग था वो कितना भयानक अपनी चरम पर था। तो स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, उन्होंने आगे जाके जब सब डिग्रियां प्राप्त कर ली तब उन्होंने कहा कि जब माहू में जन्म हुआ, बाद में हम सतारा आ गए, मगर जब सतारा स्कूल में मैं दाखिल हुआ तब वो बाकी जो बच्चे थे उनके साथ वो पढ़ नहीं सकते उनके साथ बैठ के, क्योंकि छुआछूत की बीमारी थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं बाद में कि मैं क्लासरूम के बाहर बैठता था, बाकी सब बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठते थे। एक दिन हमारे जो शिक्षक थे जिसका नाम था कृष्णा जी अम्बेडकर, जिसकी सरनेम स्वयं कृष्णा जी अम्बेडकर ने दी बाबा साहब अम्बेडकर, वही कृष्णा जी एक बार क्लासरूम में पढ़ा रहे थे तो एक दाखिला था मैथमेटिक्स का, वो उन्होंने पूछा कि किसे आता है, तब किसी बच्चे का हाथ ऊपर नहीं उठा, बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ उठा, तो शिक्षक ने कहा कि भीम आइए और सही दाखिला बताइए। जैसे ही भीमराव अपनी जगह से उठकर ब्लैक बोर्ड की तरफ जाता है, क्लासरूम में बैठे सभी बच्चे एक साथ खड़े उठकर चिल्लाने लगते हैं कि भीम उस ब्लैक बोर्ड की तरफ नहीं जाएगा। शिक्षक ने कहा कि क्यों नहीं जाएगा, तब सभी बच्चे चिल्लाए कि ये जो ब्लैक बोर्ड है उसके पीछे हमारे जो नाश्ते के डिब्बे हैं वो रखे हुए हैं। तो शिक्षक तो मक्कम थे, भीम को प्रेम करते थे, छुआछूत में मानते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपने जो डिब्बे है वो हटा लीजिए, भीम तो दाखिला गनाए यहाँ आके सही है वो बताएगा। जब सभी बच्चों ने अपने जो नाश्ते के डिब्बे थे वो हटा लिए, भीम आया और सही जो दाखिला था वो बताया। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं बाद में कि उस दिन सभी नाश्ते के डिब्बे थे वो ब्लैक बोर्ड के पीछे से तो हट गए, मगर मेरे अंतर मन में, मेरे हृदय में जो घाव पड़े थे वो जीवन भर नहीं मिटे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बाल्यावस्था में ऐसे कितने ही कटु अनुभव किए होंगे, ना ही उनका बाल नहीं काटता था, बैलगाड़ी वाला उनको गाड़ी में नहीं बिठाता था, ऐसे अगणित अनुभव है। मगर मैं हमेशा कहता हूं अगर जीवन में सफल होना है तो आप बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन देखिए कि आप नकारात्मकता के आधार पर कटु हृदय लेकर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जीवन में बाल्यावस्था में और बाद में ऐसे अनेक अनुभव होने के बावजूद भी उन्होंने अपने हृदय में कभी भी पूर्वग्रह, द्वेष, कटुता नहीं आने दी और इसी कारण वो आगे बढ़ते गए। जब महाराजा सयाजीराव जी की शिष्यवृत्ति लेकर वो जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, उस समय भी उनका जो विजन था वो किस प्रकार था, वो कैसा देश चाहते थे, वो कैसा समाज चाहते थे, लोग कैसे होने चाहिए, वो इतनी छोटी आयु में हमें दिखाई देता है। वो वहां से जब उन्होंने पढ़ा अखबारों के अंदर, वहां की एक छोटी सी लाइन आ गई थी कि मुंबई के प्रसिद्ध जो हमारे महान नेता है फिरोज शाह मेहता, उनका देहांत हुआ है और उनके देहांत होने के बाद मुंबई महानगर पालिका है वो उनका बड़ा स्टैच्यू लगा रही है। ये समाचार बाबा साहब अम्बेडकर ने सुना, तब अपने जीवन का बाबा साहब अम्बेडकर ने लेटर्स टू द एडिटर, बॉम्बे क्रॉनिकल करके उस समय का एक अखबार था, उसे एक लेटर लिखा उन्होंने उस समय 1916 में। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं उस पत्र में कि मैंने सुना है कि फिरोज शाह मेहता की बड़ी प्रतिमा लगा रहे हैं, मगर ऐसी प्रतिमा लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर इस महापुरुष को हमें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो जो उनकी प्रतिभा थी फिरोज शाह मेहता की, उस प्रतिभा का आकार का ऐसी भव्य प्रतिका उनकी प्रतिभा थी, उसी लेवल का एक लाइब्रेरी बनानी चाहिए ताकि वहां युवा आए, बच्चे आए, समाज के लोग आए और ये किताबें पढ़ पढ़ के अपने ज्ञान का आलोक बढ़ाए। ये बाबा साहब अम्बेडकर उस समय बॉम्बे क्रॉनिकल में लेटर्स लिखकर ये लिखते, तो वो किस प्रकार का समाज चाहते थे वो भी हमारे ध्यान में। एक बात वो भी हमारे ध्यान में आती है उस समय कि बाबा साहब अम्बेडकर जब वहां पढ़ रहे थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उस समय हमारे देश के प्रसिद्ध जो क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय, वो भी वहां अमेरिका में थे, क्योंकि उसे देश निकाल किया था अंग्रेजों ने, इसलिए वो वहां पर थे। तो वो वहां पर क्या करते थे, तो वो देश के जो भारत के जो युवा थे उनके अंतर मन में, उनके दिलों में देशभक्ति की भावनाएं बढ़ते थे और वो चाहते थे कि ये जो युवा है वो स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े। बाबा साहब अम्बेडकर की जिस प्रकार की प्रतिभा थी तो लाला लाजपत राय से छिपी नहीं थी, वो उनसे मिलते थे। एक बार लाला लाजपत राय ने उनसे कहा कि भीमराव आप भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़िए, मैं चाहता हूं कि आप भी इस युवाओं से जुड़े और देश को जो स्वतंत्र करने की जो एक आहले जगी है उसके एक आधार बिंदु आप भी बढ़े बने। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय जो जवाब दिया है वो जवाब उनके मन मस्तिष्क में, उनके हृदय में क्या चल रहा था, वो क्या चाहते थे, वो भी हमारे ध्यान में आते हो। वो कैसे समतापूर्ण समाज चाहते थे वो हमारे ध्यान में उस समय इतनी छोटी आयु में हमें दिखाई देता है। बाबा साहब अम्बेडकर लाला लाजपत राय को जवाब देते हैं कि मैं चाहता हूं कि देश स्वतंत्र बने, अंग्रेजों की दासता से ये देश मुक्त हो, ये मैं चाहता हूं और मेरा मन चाहता है कि देश जल्दी से जल्दी मुक्त हो स्वतंत्र अंग्रेजों की दासता से, मगर इससे पहले मैं चाहता हूं कि शताब्दियों से मेरा समाज को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, मैं पहले उसे मुक्त करना चाहता हूं। तो आप देखिए कि बाबा साहब अंबेडकर का विजन कैसा था, वो कैसा समाज चाहते थे। वो चाहते थे कि ये जो छुआछूत की बीमारी है, जो जातिवाद की बीमारी है, इसके आधार पर समाज को समता के आधार पर, समरसता के आधार पर वंचित कर दिया है, उसे समतापूर्ण एक आदर मिले ये चाहते थे, उसे समतापूर्ण अधिकार मिले वो चाहते थे, समतापूर्ण न्याय मिले वो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, और यही सपना लेकर उन्होंने अपनी डिग्रियां ली थी, क्योंकि वो महाराजा सयाजीराव से जब संवाद कर रहे थे उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि मैं ये डिग्रियां इसलिए प्राप्त करना चाहता हूं कि मैं मेरे समाज को कैसे उपयोगी सिद्ध हो सकूं। ये इतनी छोटी आयु का युवा, उनका सपना है समाज में समता बढ़े, समत्व बढ़े, बंधुत्व बढ़े, ये उनका सपना है। ये सपना लेकर जब डिग्रियां लेकर भारत भूमि पर आते हैं, बड़ौदा आते हैं, बड़ौदा में उनको कटु अनुभव होते हैं और यहाँ कटु अनुभव लेकर, छुआछूत के विकृत अनुभव लेकर जब वो वापिस बॉम्बे जाते हैं और यहाँ पर वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपनी एक ऑफिस प्रारंभ करते हैं और वहां पर भी बहुत अच्छी उनकी प्रैक्टिस चलती है स्टॉक एक्सचेंज की, मगर वहां पर भी उनकी ये जो छुआछूत की जो बीमारी है वो पीछा नहीं छोड़ती और उनको अपनी ऑफिस बंद करनी पड़ी। और उनकी जो डिग्रियां थी वो बाकी थी, वो हम सब जानते हैं कि वो लेने वापिस गए थे। उस समय उन्होंने जब वो फॉरेन जा रहे थे दोबारा अपनी जो बाकी की डिग्रियां लेने, उस समय उन्होंने समाज जागरण के लिए, समाज का मनोगत बढ़े इसके लिए, समाज का वैचारिक जागरण हो इसके लिए उन्होंने एक मैगजीन प्रारंभ किया मूक नायका का। जो कोल्हापुर के महाराजा थे उन्होंने उनको 3,000 रुपये उस समय उनको सहायता दी और उन्होंने मैगजीन प्रारंभ किया। ये मैगजीन प्रारंभ किया ना उन्होंने मूक नायक, उन्होंने उन्होंने 13 एडिटोरियल लिखे हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे व्यक्तित्व को, उनके पूरी विचार शैली को, उनके पूरे दर्शन को अगर हमें देखना है तो ये जो 13 एडिटोरियल है वो अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ध्यान में आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में 3 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे थे। एक वो धार्मिक मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे थे, दो वो सामाजिक स्तर पर वो लड़ाई लड़ रहे थे, और तीसरी उनकी लड़ाई थी वो सामाजिक लड़ाई, अरे राजकीय लड़ाई थी। ये 3 मोर्चे पर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और वो लड़ाई का एक ही उनका आधार था कि समाज समत्व बढ़े, बंधुत्व में बढ़े। ये जो मैंने कहा कि मूक नायक के जो 13 13 एडिटोरियल है वो हमें पढ़ना चाहिए, खास करके युवाओं को, कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो दर्शन था वो क्या चाहते थे वो उसमें हमें बड़ा सटीकता से दिखाई देता है। बाबा साहब अम्बेडकर अपने एडिटोरियल में पहले ही अंक में लिखते हैं कि हम सब, मतलब पूरा जो समाज है, हिंदू समाज है, पूरा राष्ट्र है, वो एक ही नाव में बैठे हुए यात्री हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की सोच देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि वो संकुचित विचार लेकर चलने वाले महापुरुष नहीं है। वो कहते हैं कि हम ये जो नाव में हम सभी बैठे हैं, अगर एक तरफ से छेद हुआ तो सभी डूबेंगे, सभी मरेंगे, इसलिए हम सबको मिलकर ये जो हमारी नाव है वो आगे ले जानी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर उसी मूक नायक में एक और बात लिखते हैं कि ये जो पूरा समाज है, पूरा जो हिंदू समाज है, वो 4 मंजिला इमारत है। ये 4 मंजिला इमारत है तो उसमें ऊपरी मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति कितना भी निकम्मा हो, कितना भी चरित्रहीन हो, कितना भी निष्कृष्ट हो, वो नीचे नहीं आ सकता। और नीचे रहने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, चाहे कितना भी चरित्रवान हो, वो ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो पूरी 4 मंजिला जो इमारत है उसमें एक दूसरे में जाने के लिए जो सीढ़ी होनी चाहिए वो सीढ़ी ही नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूरा सामाजिक संघर्ष था वो ये जो असमान जो इमारत थी उसे ध्वस्त करना और एक समान, एक समरस इमारत का निर्माण करना, ये उनका सपना था और ये सपना उन्होंने इस तरह व्यक्त किया। साथ साथ उन्होंने इसी मूकनायक में एक बार एक बात ये भी लिखी, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है उसमें कि उस समय, मतलब 1920 में जनवरी में उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये मूक नायक प्रारंभ किया था, उस समय 1920 में जापान पूरे विश्व में नंबर 1 पर था विकास की दौड़ में। बाबा साहब अम्बेडकर इसी का हवाला देते हैं और आज जो शब्द आज हमारे कानों में दिखाई सुनाई देते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत, अगर भारत कि इस जो विभावना आज हम देखते हैं वो 1920 में मूक नायक आप पढ़ेंगे तो बार बार हमें ऐसे ही थोड़े शब्द अलग होंगे, मगर इस प्रकार का सपना जो बाबा साहब अम्बेडकर का था कि भारत समर्थ बने, शक्तिशाली बने, ये मूक नायक में हमें दिखाई देता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जापान का उदाहरण देकर लिखते हैं उस मूक नायक में कि जापान आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में विकास की दौड़ में नंबर 1 पर है, तो भारत नंबर 1 पर क्यों नहीं पहुंच सकता? ये बाबा साहब अंबेडकर प्रश्न पूछकर आगे और लिखते हैं कि जापान में भी जाति व्यवस्था थी, जापान में समुराई नाम की जो जाति थी वो अपने आप को सर्वोच्च मानती थी और बाकी को दबाव कर रखती थी। मगर जब लगा कि इस जातिवाद के कारण जापान प्रगति की दौड़ में पिछड़ रहा है और अपना राष्ट्र है वो अपनी सही प्रतिभा नहीं दिखा रहा है, तब जापान ने अपनी जाति व्यवस्था का लोप कर दिया और जापान में रहने वाला प्रत्येक जापानी मेरा भाई है, हमारे सबके सपने एक है कि जापान आगे बढ़ना चाहिए। ये सपना लेकर, बंधु भाव लेकर, बंधुता लेकर, जो बाबा साहब अंबेडकर ने भी सपना शब्द दिया है, स्वामी विवेकानंद ने भी शब्द दिया है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी तेरा भाई है, जापान ने भी यही भाव अंतर्मन में लेकर, अपने हृदय में लेकर आगे बढ़ा कि हम सब जापानी एक है, एकात्म है, एक रस है, एक रूप है, और जापान नंबर वन पर पहुंच गया। ये पूरे शब्द लिखकर बाबा साहब आम्बेडकर लिखते हैं कि अगर भारत को भी दुनिया में वैभवशाली बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो ये जाति व्यवस्था का लोप करना पड़ेगा, तभी दुनिया में हम नाम कमा सकेंगे। तो आप देखिए, मैंने ये इतने जो शब्द कहे उसे आधार पर आपको ध्यान में आएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर कैसा समाज चाहते थे, किस प्रकार का राष्ट्र चाहते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर जब फॉरेन में अपनी अधूरी शिक्षा लेकर जब वापिस आए, उसके बाद उन्होंने अपने जीवन की पहली संस्था, पहले संगठन की स्थापना की थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये संगठन का नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा और ये प्रारंभ हुआ 9 मार्च 1924 को। जब ये संगठन प्रारंभ हुआ, जैसे मैं प्रारंभ में कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जातिवाद की मानसिकता से पीड़ित नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ये जब संगठन प्रारंभ किया तो उसके अध्यक्ष उन्होंने एक ब्राह्मण को बनाया, उसका नाम था चिमनलाल सितवड़ेकर। ऐसे जितने भी उसके उपाध्यक्ष थे, बाकी जो उसमें टीम थी, वो अनेक जाति की, अलग अलग जाति के उसमें लोग थे और बाबा साहब अम्बेडकर भी एक थे। और बाबा साहब अम्बेडकर अपनी जीवन की पहली संस्था प्रारंभ करते समय वो कहते हैं कि मैंने जो ये डिग्रियां प्राप्त की है उसके आधार पर मैंने मन मस्तिष्क में कुछ योजनाएं सोची हैं, उस योजनाओं का अगर मैंने धरातल पर ला दिया तो इस योजना के कारण केवल अछूत समाज का नहीं, सभी समाज का भला होगा। तो आप देखिए कि बाल्यावस्था में उनको कटु अनुभव हुए हैं, उसके बावजूद भी उनकी सोच क्या है, सभी का कल्याण, सर्व का कल्याण, ये बाबा साहब अम्बेडकर चाहते हैं। और उस समय 1924 में उनका जो विजन था, उन्होंने इस संस्था के जो एजेंडा तय किया था, वो आज भी इतने ही महत्वपूर्ण है और आगे भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं उसमें, उन्होंने जो एजेंडा 4 तय किया था, पहला था संस्कार केंद्र प्रारंभ करना। तो बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा आप जीवन पढ़ेंगे ना, पूरा जीवन, तो उसमें संस्कारशील और विद्या उन्होंने सर्वोच्च स्थान पर रखा है। उन्होंने कहा है एक युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए, जैसे उन्होंने अपने 3 गुरु बताए थे, बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले को, उसी तरह उन्होंने विद्यार्थियों को अपने 3 आराध्य देवता बताए थे। वो 3 आराध्य देवता जब हम उनके मुख से जब पढ़ते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, तब हमें ध्यान में आता है कि अपने जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर कैसा युवा चाहते थे, कैसा व्यक्ति निर्माण चाहते थे, कैसा समाज चाहते थे। उन्होंने अपने जो 3 देवता, जो बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं कहते हैं कि मैं इन 3 देवताओं की मैं पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, ये 3 कौन है, तो पहले वो बताते हैं कि विद्या मेरे पहले आराध्य देवता है। अगर विद्या अपने जीवन में आ गई तो आप आगे ही बढ़ते, आप मनुष्य का जिस प्रकार की सोच होनी चाहिए, मानवता पूर्ण समाज चाहिए, वो विद्या से आती है, ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। दूसरा वो अपना आराध्य देवता बताते हैं, वो बताते हैं कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आत्मविश्वास जैसी कोई और दैवी शक्ति नहीं है, आत्मसम्मान बहुत जरूरी है, और इसीलिए वो कहते हैं कि आप अब भेड़ बकरी जैसे मत रहिए, आप सिंह की तरह रहिए। अगर सिंह की तरह रहेंगे तो कोई आपका बलिदान नहीं लेगा, भेड़ बकरी आप बनेंगे तो आपका बलिदान लेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अपने दूसरे आत्मसम्मान बताते हुए कि आप आत्मसम्मान ये मेरे दूसरे देवता है। तीसरा अपना जो देवता बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं और जो अपनी संस्था प्रारंभ करते हैं उसी में उसको प्रतिबिंबित हम देख सकते हैं। और तीसरा उनका आराध्य देवता है और वो है शील चरित्र। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने फॉरेन में कई समय रहा मगर कभी भी मैंने न बीड़ी सिगरेट शराब को हाथ लगाया, क्योंकि शील के आधार पर ही मनुष्य आगे बढ़ सकता है। और उन्होंने कहा कि जो ये विद्या है ना वो दो धारी दो दो तरह की तलवार है, उसके आधार पर आप किसी की हत्या भी कर सकते हो और किसी का कल्याण भी कर सकते हो। आप अपनी सोच पर आगे बढ़े कि आप कैसे इस तलवार का उपयोग करना चाहते हैं, किसी की रक्षा करना चाहते हैं या किसी की हत्या। तो बाबा साहब अम्बेडकर किस प्रकार का युवा, किस प्रकार का समाज चाहते ये भी हमें दिखाई देता है। और वो ये अपनी संस्था प्रारंभ करते तो पहला ही बिंदु है कि संस्कार केंद्र प्रारंभ करना, दूसरा है छात्रालय प्रारंभ करना, लाइब्रेरी प्रारंभ करना, ये उनका दूसरा एजेंडा है। तीसरा उनका एजेंडा है कि जो युवा है वो युवा सिर्फ छोटी मोटी नौकरियों पर आधारित न रहे, वो छोटा मोटा कारोबार भी करे। तो ये संस्था का तीसरा उद्देश्य ये भी था कि युवाओं को छोटा मोटा कारोबार कैसे कर सके उसका प्रशिक्षण देना। और चौथा उनका एजेंडा था, चौथी उनकी कार्य योजना थी कि जिसके भी पास छोटी मोटी कृषि की जमीन है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे प्राप्त हो, ये हमें बाबा साहब आम्बेडकर देते। तो आप सोचिए, आप चार आज वर्तमान समय में आप उसको आधार बनाकर कार्य करते हैं तो कैसा समाज बनेगा हम सब जानते हैं। दूसरा बाबा साहब आम्बेडकर जो ये तीन आराध्य देवता बताए, इस आधार पर हम युवा और समाज का निर्माण करते हैं तो कैसा भव्य दिव्य हमारा समाज हमारा राष्ट्र बनेगा, ये हमारे ध्यान में आता है। और तीसरा बाबा साहब आम्बेडकर, ये मैंने अपनी उनकी जीवन की जो पहली संस्था बनाई ये हमने बताया। दूसरा उन्होंने जो अपने जीवन का पहला जो निबंध लिखा था कास्ट इन इंडिया, वो कास्ट इन इंडिया में भी उनका जो सपना था वो समाज कैसा चाहते थे, राष्ट्र कैसा चाहते थे, वो भी हमें उसमें दिखाई देता है। बाबा साहब आम्बेडकर कास्ट इंडिया में लिखते हैं कि भारत सांस्कृतिक धरातल पर एक एकात्मा है मगर सामाजिक स्तर पर वो एक एकात्मा नहीं है। और जब तक सामाजिक स्तर पर आप एक नहीं होते इस राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकते। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि जातिगत आधार पर जब आप सोचते हैं तो अपनी जो सोच है वो जातिगत बन जाती है, उसमें राष्ट्र केंद्र में नहीं रहता। बाबा साहब अंबेडकर यही कहते हैं कि सांस्कृतिक धरातल पर भारत चाहे कितना भी एक हो, जब तक वो सामाजिक स्तर पर एक नहीं होगा ये राष्ट्र कभी एक एकात्मा नहीं होगा। और बाद में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है और जब हम पढ़ते हैं उसे तब ध्यान में आता है कि भारत हजारों सालों से सांस्कृतिक स्तर पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी थी कामरूप से लेकर कच्छ तक भारत सांस्कृतिक स्तर पर एक था मगर सामाजिक स्तर पर एक नहीं था, भौगोलिक स्तर पर एक नहीं था, राजकीय स्तर पर एक नहीं था। और इसी कारण भारत वर्ष 1000 साल की गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। तो बाबा साहब आम्बेडकर भी यही कहते हैं कि अगर सांस्कृतिकता के आधार पर भारत एक है उसी तरह भारत को भी सामाजिक स्तर पर एक बनना चाहिए। और हम आगे बढ़े, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें 4:45 को पूरा करना है इसे, तो थोड़ा मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन के दो सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। ये दोनों सत्याग्रह की जब हम मीमांसा करते हैं उसमें आगे उसमें हम जितना भी अंदर जाते हैं तब हमारे ध्यान में आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का लक्ष्य क्या था। बाबा साहब अम्बेडकर जब 20 मार्च 1927 को महाड़ में सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं पानी के लिए, क्योंकि ये जो महाड़ है जिला, वहां चौदार तालाब है, उसमें ये तालाब के अंदर अपने ही धर्म बांधव है, वो पानी पी नहीं सकते, अगर पानी लेने गए तो उसके मार डंडे पड़ते हैं, अगर उसमें भेड़ बकरियां पानी पीने के लिए जाती है तो उसके कुछ रुकता नहीं है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ये जो असमानता थी उसके लिए उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया, सत्याग्रह किया, उसमें से पानी लिया और ये सत्याग्रह में सफल भी हुए। मगर बाद में उन्होंने दोबारा ये सत्याग्रह प्रारंभ करना पड़ा, क्योंकि जातिवादी मानसिकता से पीड़ित जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि समाज समरस बने, समाज समत्व बने, समाज बंधुत्व पूर्ण बने, जो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर को 25 नवंबर को पुनः सत्याग्रह प्रारंभ करना पड़ा। और उस सत्याग्रह के समय जो बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, उसी के एक बिंदु में आपको कहूंगा जो बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं कहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि ये जो छुआछूत की बीमारी है उसके कारण अछूत समाज को तो नुकसान हुआ ही, साथ साथ सवर्ण समाज को भी नुकसान हुआ। बाबा साहब आम्बेडकर ये दोनों बात करने के बाद आगे कहते हैं कि इन दोनों के अलावा इस राष्ट्र का ज्यादा नुकसान हुआ और इस राष्ट्र कल्याण के लिए हमने ये सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो बाबा साहब आम्बेडकर की सोच कैसी है ये हमें ध्यान में आता है। बाद में बाबा साहब आम्बेडकर ने 1939 में समता सैनिक दल को जब वो संबोधित कर रहे थे उस समय भी उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि ये जो नासिक में कालाराम मंदिर में हम दर्शन कर नहीं करते इस कारण हम मर जाते थे, या महाड़ का पानी नहीं पीने से हम मर जाने वाले थे, ऐसा नहीं है। मगर हमारा जो ये दोनों सत्याग्रह था मंदिर और महाड़ में, ये दोनों सत्याग्रह समानता के लिए था, क्योंकि हम भी धर्म बांधव है आपके, ये समानता हम चाहते थे, इसके कारण हमने ये दोनों सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो बाबा साहब आम्बेडकर ये चाहते, साथ साथ उस समय उन्होंने महाड़ की धरती पर एक घोषणा पत्र भी उन्होंने व्यक्त किया था। उस घोषणा पत्र के आधार पर हम उनके तीन चार बिंदु है, ज्यादा तो नहीं मैं जाऊंगा, मगर पहला जो है वो बाबा साहब आम्बेडकर की जो सोच थे वो कैसा राष्ट्र चाहते थे वो पहले ही घोषणा पत्र के पहले ही बिंदु में बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि सभी मनुष्य को जन्म के आधार पर समान स्तर पर अधिकार मिलना चाहिए, सभी मनुष्य समान है, इस आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। साथ साथ बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं अगर इस राष्ट्र का कल्याण करना है, इस समाज का हमें कल्याण करना है, तो बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि तीन जो बंदी हमने तय की है वो हमें तोड़नी पड़ेगी। तीन बंदी क्या है? एक स्पर्श बंदी, बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि ये जो स्पर्श बंदी है वो जंजीर हमें तोड़नी पड़ेगी। स्पर्श बंदी यानी छुआछूत, जातिवाद, अगर कोई उसे छू गया तो अपवित्र बन गया, ये जो मानसिक विकृति है उसे हमें तोड़ना पड़ेगा। बाबा साहब आम्बेडकर दूसरी बंदी कहते हैं कि बेटी बंदी, जब तक आपस में शादी विवाह नहीं होता तब तक समाज में न समानता आएगी, न समरसता आएगी, न बंधुता आएगा। तो अगर समाज को एकरस करना है, समरस करना है, समत्व पूर्ण करना है, बंधुत्व पूर्ण करना है, एकात्म बनाना है, तो जब तक आपस में शादी बढ़ेगी तब समाज का कल्याण होगा। यह सही बात है कि वर्तमान समय में अनेक युवा ये बाबा साहब आम्बेडकर का जो सपना था वही लेकर आज युवा कर रहे हैं। तीसरा बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बंदी गिनाई वो है रोटी बंदी। तो आपस में खान पान भी नहीं था, एक पंक्ति में एक सह संपत बैठ के सर्वे भवंतु सुखिन की बात करने वाले हम साथ में बैठकर भोजन भी नहीं करते थे। तो बाबा साहब आम्बेडकर ये चाहते, वीर सावरकर ने भी इसी प्रकार की सात बंदी गिनाई है बाबा वीर सावरकर ने। वीर सावरकर भी इस छुआछूत की बीमारी के घोर विरोधी थे, वो भी जातिवाद के खिलाफ थे, वो चाहते थे कि ये जो समाज है अगर ये सात बंदी से मुक्त नहीं होगा तब तक इस राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा। वीर सावरकर ने कौन सी सात बंदी गिनाई है? जो समरस समाज के लिए बहुत जरूरी, समत्वपूर्ण समाज के लिए बहुत जरूरी है। वीर सावरकर ने पहली ही बंदी गिनाई है स्पर्श बंदी, वही जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। दूसरी रोटी बंदी, वही जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। तीसरी बंदी, वही जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा बेटी बंदी। बाद में चार और बंदी वीर सावरकर कहते हैं, व्यवसाय बंदी। जैसे मैंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो असमान इमारत ध्वस्त कर एक समरस समत्वपूर्ण इमारत चाहते थे, सावरकर भी यही कहते कि जब तक सभी को व्यवसाय एक सह नहीं कर सकते, इस प्रकार की बंदी हमें तोड़ना पड़ेगा। एक ही वर्ग दूध ही बेचे, एक ही जाति सभी को पढ़ाए, ये नहीं। एक ही जाति शस्त्र लेकर लड़े, ये नहीं। सभी को लड़ना चाहिए, तभी ये राष्ट्र का कल्याण होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी नासिक जिले के सटाना नाम का जो छोटा सा गांव है वहां पर यही बात कही थी, अगर आपके गांव की रक्षा करनी है, अगर आपके राष्ट्र की रक्षा करनी है तो सभी को शस्त्र उठाने का अधिकार होना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, यही बात सावरकर कहते। बाबा वीर सावरकर ने एक सिंधु बंदी भी गिनाई जो समाज के लिए अहितकारी थी। सागर पार आप नहीं कर सकते, जो समाज पहले पूरे सागर पार करके पूरी दुनिया में छा गया था और पूरे भारत वर्ष को एक सोने की चिड़िया बना गया था, वही भारत ऐसी विकृति आ गई कि सागर पार नहीं कर सकता। दूसरा वेदोक्त बंदी, सावरकर कहते हैं कि वेद आप पढ़ नहीं सकते, जो निचली निम्न जाति का व्यक्ति वेद नहीं पढ़ सकता, ये कैसी मानसिक बीमारी है। सातवीं वीर सावरकर ने कहा कि शुद्धि बंदी, ये भी हमारे लिए घातक हुई, अगर किसी को हमारे धर्म में आना है तो उसके लिए बंद कर दिया, अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में चला गया उसे वापिस आना है तो वो कहाँ जाएगा, कैसे आएगा। तो इसके कारण समाज का भी नुकसान हुआ, राष्ट्र का भी कल्याण हुआ, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। दूसरा, ये मैंने पूरा जो बताया बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूरा सत्याग्रह था को किस आधार पर, बाबा साहब अम्बेडकर 1935 में जब धर्मांतरण की घोषणा करते हैं तब भी उनका एकमेव लक्ष्य है कि इस राष्ट्र का कल्याण हो, इस राष्ट्र को किसी प्रकार की हानि ना हो, ये उन सोचते हैं। आज तक जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस प्रकार की उनकी सोच थी, जिस प्रकार का उनका विजन था, वो आज तक हमारे सामने नहीं आया। आज तक बाबा साहब अम्बेडकर 1942 से लेकर 1946 तक वो श्रम मंत्री थे, कुल मिलाकर उनके पास 16 अलग अलग मंत्रालय थे, जल मंत्रालय था, श्रम मंत्रालय था, ऐसे। तो उस समय उन्होंने जो कार्य किया वो आज तक लोगों के सामने नहीं आया। आज जो शब्द जिन्हें मैंने कहा ना कि भारत समृद्ध कैसे बने, शक्ति संपन्न कैसे बने, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के 42 से लेकर 46 तक के कार्यों का हम जब मूल्यांकन करते हैं तब ध्यान में आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस प्रकार का समाज किया। मैं कुछ पढ़ा, हमारे पास समय नहीं है, मैं बाबा साहब अम्बेडकर ने इस राष्ट्र कल्याण के लिए जो कार्य किया वो मैं तुरंत एक एक शब्दों में कह देता हूँ। जैसे उन्होंने जो ये दो 42 से लेकर 46 तक जो कार्य किया, वो एक तो उन्होंने रोजगार कार्यालय प्रारंभ किया, रोजगार कार्यालय एम्प्लॉय एक्सचेंज की प्रारंभ करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे, कोई नहीं जानता। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कर्मचारी राज्य बीमा, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया। काम के जो कलाक थे, घंटे थे, वो 12 थे, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 कर दिए। दूसरा, जो हमारी बहने हैं उसको मैटरनिटी लीव देनी चाहिए, उसके प्रणेता बाबा साहब अम्बेडकर थे। ट्रेड यूनियन को मान्यता, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। महंगाई भत्ता, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। पेड हॉलीडे, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया। हेल्थ इंश्योरेंस, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। लीगल स्ट्राइक एक्ट, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। प्रोविडेंट फंड, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। लेबर वेलफेयर फंड, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया। टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। सेंट्रल इरिगेशन कमीशन, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। राइट टू वॉट वो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें दिया, इंडियन स्ट्रेटेजिकल लॉ वो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें दिया, सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड वो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो बाबा साहब अंबेडकर की हमें देन है। साथ साथ आज आप बड़ी बड़ी नदियों पर जो बड़े बड़े डैम हमें दिखाई देते हैं ना, उसके मूल में बाबा साहब अंबेडकर है। आज भी खास जो युवा है, मेरी अनुरोध है कि बाबा साहब अंबेडकर ने ऊर्जा नीति और जल नीति पर जो विजन दिया था वो आज भी नेट पर है, वो पढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि बड़े बड़े नदियों पर जो बारिश आती है तो लाखों गैलन पानी वैसे ही व्यर्थ चला जाता है सागर में, वो रोकना चाहिए, नदियों पर बड़े बड़े डैम बनने चाहिए, ये विजन बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और एकदम गरीब के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए बिजली उत्पन्न हो ज्यादा से ज्यादा, उसका विजन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया था। साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे अनेक पहलुओं पर कार्य किया था ताकि हम और हमारा राष्ट्र और हमारा समाज का पूर्णतः कल्याण हो, राष्ट्र पूरे विश्व में पूरी शक्ति के आधार पर, सामर्थ्य के आधार पर आगे बढ़े, ये बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने कहा था उस समय, आज भी हम बोलते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उस समय भी ऐसा ही बोला जाता, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 1945 में कि इस मानसिकता से हमें छुटकारा पाना चाहिए, कृषि महत्व की है, साथ साथ हमें देश भर के अंदर छोटे मोटे बड़े बड़े उद्योग लगाने चाहिए, उद्योग से ही इस राष्ट्र का कल्याण होगा और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर, मैं और भी एक घंटा दो घंटा और भी उनकी शिक्षा नीति, उनकी अर्थ नीति, उनकी इतिहास, सभी पहलुओं पर मैं बोल सकता हूं, उन्होंने महिलाओं को कैसे अधिकार दिया, उन्होंने शिक्षा पर कैसा विजन प्रस्तुत किया, मगर समय की भी हमें मर्यादा है, तो इतना जो समय मुझे मिला, इस समय में मैंने बाबा साहब अम्बेडकर किस प्रकार का समाज चाहते थे, किस प्रकार का राष्ट्र वो चाहते थे, मैंने संक्षिप्त में आप सबको बताया है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप, अगर समय है तो आप कह सकते हैं। मुझे फाउंडेशन ने मेरे विचार व्यक्त करने के लिए आज जो समय दिया उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर फॉर इलस्ट्रेटिंग सो ब्यूटिफुली एंड शेयरिंग सच अ गुड नॉलेज ऑफ आवर ग्रेट लीडर बाबा साहेब अम्बेडकर। सच में सर काफी नॉलेजेबल था आपका सेशंस। मैं फेसबुक और यूट्यूब, हमारे एसडीआर केएफटी यूट्यूब चैनल और एफवी पेज पे देख ही रही थी कुछ क्वेश्चंस आए हैं क्या, बट इसमें अभी फिलहाल नहीं आए बिकॉज आपने इतने अच्छे तरीके से, इतना ब्यूटिफुली इलस्ट्रेट करके जो हमें नॉलेज दिया है, जो शेयर किया है, इट वॉज रियली अ ग्रेट सेशन सर।
थैंक यू सर, धन्यवाद। और आगे भी नॉलेज फाउंडेशन कभी भी मुझे कभी भी बुला सकता है, मैं तैयार हूँ।
थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम इन स्पाइट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल। आई वुड लाइक टू थैंक आरजीआई चेयरमैन सर श्री सुनील रायसोनी जी फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ एसजीआरकेएफ, ऑफ एसजीआरकेएफ एफबी पेज एंड अ यूट्यूब चैनल। And for more sessions like this, I will keep updating you all. Till then, take care, be safe. Thank you. Thank you, sir.
Twenty years of existence. Two universities. 23 educational institutes. Offering 137 courses. Raisoni Group of Institutions, a vision beyond.